डाइनिंग हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। लंबी टेबल पर चांदी के बर्तन सजे थे। हर सीट पर कोई ना कोई बैठ चुका था। रत्ना देवी अपनी जगह पर, चेहरे पर वही गरिमा। विश्वनाथ उनके दाईं तरफ, शांत लेकिन नजरें सब पर। आर्यन और अदिति साथ, और थोड़ी दूरी पर अक्षरा अपने माता पिता के साथ बैठी थी। श्यामली अब भी टेबल के पास खड़ी थी, नौकरों के साथ मिलकर सबको खाना परोस रही थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि आज सब उसकी कोशिश को सराहेंगे। लो, उसने धीरे से रत्ना देवी की थाली में सब्जी डाली, फिर बाकी सबको भी परोसने लगी। कुछ ही पल बाद सबने खाना शुरू किया। पहला कौर और फिर एक अजीब सी खामोशी। चेहरे बदलने लगे। रत्ना देवी ने भौहें से कोड़ ली। विश्वनाथ ने हल्का सा चखकर नज़र उठाई। आर्यन और अदिति ने एक दूसरे को देखा। ये, रत्ना देवी ने कौर नीचे रखते हुए कहा, ये क्या बना है? उनकी आवाज़ में नाराज़गी साफ थी। मधु, उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई। मधु घबराकर दौड़ी आई। जी ठाकुराइन। तुम्हें इतना भी नहीं आता, रत्ना देवी ने डांटते हुए कहा। खाने का ये हाल कर दिया, स्वाद बिल्कुल ख़राब। मधु घबरा गई। लेकिन मैंने तो, रुकिए। तभी श्यामली आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन साफ। खाना मैंने बनाया है। सबकी नज़रें एक साथ उसकी तरफ उठीं। एक पल का सन्नाटा। श्यामली ने हल्का सा गला साफ किया। लेकिन मैंने सब ठीक से डाला था। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा हो कि गलती कहाँ हुई। तभी अक्षरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इट्स ओके श्यामली। उसकी आवाज़ में सहानुभूति थी, लेकिन कहीं ना कहीं तंज भी छुपा था। वैसे भी, वो आगे बोली, बेचारी दिन भर ऑफिस में रहती है, थक जाती होगी, तो ऐसे हो जाता है कभी कभी। श्यामली ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द रुक गए। तभी अक्षरा की माँ ने भी बात जोड़ दी। बेटा श्यामली, उन्होंने समझाने वाले लहजे में कहा, तुम अभी बच्ची हो, घर और बाहर दोनों काम एक साथ संभालना आसान नहीं होता, तो ऐसी कोशिश मत किया करो जो आखिर में नाकाम ही रहे। ये शब्द सीधे दिल पर लगे। श्यामली चुप रह गई। लेकिन आंटी जी, अदिति अचानक बोल पड़ी। आवाज़ में साफ विरोध था। आप ये क्या बोल रही हैं? सबकी नज़रें उसकी तरफ मुड़ी। श्यामली सब संभाल सकती है, अदिति ने मजबूती से कहा, बस आज कुछ गड़बड़ हो गई। आर्यन ने भी हल्का सा सिर हिलाकर उसका साथ दिया। श्यामली ने अदिति की तरफ देखा। उसकी आंखों में आभार था, लेकिन साथ ही एक चोट भी। आप लोग, श्यामली ने धीरे से कहा, कुछ देर इंतजार कर लीजिए, मैं कुछ और बनाकर लाती हूँ। वो मुड़ने ही वाली थी कि, अरे नहीं, अक्षरा ने तुरंत कहा और अपना हाथ पेट पर रखते हुए हल्का सा चेहरा बनाया। मैं तो मैनेज कर लूँगी, फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन बच्चा, उसकी आवाज़ में बनावटी चिंता थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। टेबल पर फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। रत्ना देवी का चेहरा थोड़ा बदल गया, वो तुरंत गंभीर हो गई। तुम बैठो, उन्होंने अक्षरा से कहा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। विश्वनाथ की नज़र एक पल के लिए अक्षरा पर गई, फिर श्यामली पर टिक गई। श्यामली वहीं खड़ी थी, हाथ हल्के से कांप रहे थे, आंखों में सवाल और दिल में एक अजीब सा बोझ। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर झुका लिया, जहां एक साजिश सफल दिख रही थी और एक सच्ची कोशिश सवालों में घिर चुकी थी। कुछ देर बाद अक्षरा के कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही बाहर की सारी औपचारिकता जैसे उतर गई। अंदर माहौल बिल्कुल अलग था, हल्की रोशनी और तीनों के चेहरों पर एक अजीब सी संतुष्टि। अक्षरा बेड पर बैठी थी, हाथ अब भी पेट पर रखा हुआ, लेकिन इस बार चेहरे पर दर्द नहीं, एक चालाक मुस्कान थी। उसके माता पिता पास ही सोफे पर बैठे थे, दोनों के चेहरे पर भी वही संतोष। देखा, अक्षरा ने धीरे से कहा, लेकिन आवाज़ में जीत साफ झलक रही थी, कैसे मैंने श्यामली को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई खेल जीत गई हो। अब तो, वो आगे झुकते हुए बोली, विशु की माँ के दिमाग में यही चलेगा कि उनकी बहू, उसने हल्का सा तंज भरा ठहाका लगाया, अपने होने वाले पोते की भी परवाह नहीं करती और मुझे भूखा रख सकती है। उसकी माँ ने तुरंत हामी भरी, चेहरे पर एक सोची समझी गंभीरता के साथ। बिल्कुल, वो बोली, यही तो चाहिए था, रत्ना जी जैसी औरत, उसने धीमे लेकिन सधे हुए लहजे में कहा, सीधे वार से नहीं, दिमाग से टूटती है। अक्षरा ध्यान से सुन रही थी। मैं, उसकी माँ आगे बोली, धीरे धीरे उनके दिमाग में ये बात बैठा दूंगी कि श्यामली लापरवाह है और घर संभालने लायक नहीं। उसके पिता ने भी सिर हिलाया। आज जो हुआ वो बस शुरुआत है। लोगों के सामने इमेज गिराना सबसे आसान तरीका होता है किसी को कमज़ोर करने का। अक्षरा हल्का सा हंसी, और आज, वो बोली, पहला दाग लग गया। उसने आईने की तरफ देखा, खुद को निहारा। अब बस, उसकी आवाज़ और ठंडी हो गई, इसे गहरा करना है। उसकी माँ उसके पास आकर बैठ गई, उसके कंधे पर हाथ रखा। ध्यान रखना, वो बोली, जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे, हर किसी के मन में उसके खिलाफ शक भरना है। अक्षरा ने सिर हिलाया और सबसे पहले उसने धीमे से कहा, रत्ना देवी। कमरे में फिर से हल्की खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी आने वाले तूफान का संकेत थी। तीनों के चेहरों पर वही मुस्कान थी जो साफ बता रही थी ये खेल अभी शुरू हुआ है, जहां साजिश ठहराने लगी थी और सच अभी भी अनजान था। आर्यन और अदिति के कमरे में माहौल बिल्कुल अलग था। अदिति इधर उधर टहल रही थी, चेहरे पर साफ गुस्सा। मैं जानती हूँ, वो दांत भींचते हुए बोली, ये सब उसी अक्षरा का काम है। आर्यन बेड पर बैठा उसे देख रहा था हल्की मुस्कान के साथ। उसका तो नाम तक लेने का मन नहीं करता, अदिति ने हाथ हवा में झटकते हुए कहा। अब से उसे हम डायन कहेंगे। आर्यन हंस पड़ा। अच्छा, वो उठा और धीरे से उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अदिति थोड़ा चौंकी, क्या कर रहे हो? गदाधारी भीम, आर्यन ने हंसते हुए कहा। शांत, अदिति ने उसे घूरा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ ही गई। मजाक मत करो, वो बोली, सीरियस बात है। आर्यन ने उसका माथा हल्के से छुआ। पता है, उसने धीमे से कहा, लेकिन सही वक्त पर सही चाल चलेंगे। अदिति अब भी गुस्से में थी, लेकिन उसके शब्दों में थोड़ा भरोसा आ गया था।